नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल नाला के डी सिल्टिंग कार्य का निरीक्षण किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने माइक्रोबायोम के बारे में बिना सर्जरी के पता लगाने वाला उपकरण तैयार किया। ब्राजील से आए प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और गैर सरकारी संगठन चिंतन द्वारा संचालित कचरा प्रबंधन केंद्रों का दौरा किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और दिल्ली में घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवाई और रेल सेवाएं बाधित। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सुनहरी पुल नाला के डी सिल्टिंग कार्यो का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी प्रमुख नालों की डी सिल्टिंग सुनिश्चित कर रही है ताकि यमुना नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 वर्षों से जिन समस्याओं से दिल्ली जूझ रही थी उनके स्थायी समाधान में दिल्ली सरकार पूरी तरह से जुटी है।
चाहे जल भराव हो दिल्ली का, चाहे प्रदूषण हो, पूरा प्रयास करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, चाहे पोल्यूशन के हम जितने मेजरमेंट आज कर रहे हैं, आज से हम जब सड़कें हमने ठीक करनी शुरू करी, आज से जब हमने मिस लगानी शुरू करी, आज से जब हमने बाकी सब मेजरमेंट करने शुरू किए, तो उसका रिजल्ट आते आते टाइम लगेगा। पर ये अगर पिछली सरकारों ने कुछ किया होता तो दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों का समय भी बचेगा। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे उपकरण को तैयार किया है जिससे इंसान के आंतों में मौजूद सूक्ष्म जीवाणुओं या गट माइक्रोबायोम के बारे में बिना सर्जरी के पता लगाया जा सकता है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इस अनुसंधान के प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर सर्वेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस उपकरण को निगलने के बाद ये सीधा छोटी आंत में जाकर बैक्टीरिया के नमूने इकट्ठा करता है। उन्होंने बताया कि सभी बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होते और इंसान के शरीर की आधी कोशिकाएं सूक्ष्म जीव होती हैं।
जो हमारा GI ट्रैक्ट की संरचना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की संरचना है, इसमें कई भिन्न भिन्न प्रकार की कम्युनिटीज ऑफ माइक्रोब्स रिजाइड करती हैं। तो अब जो नई रिसर्च आई है उसमें ये समझ आता है कि जो बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन में रहते हैं, ये हमारी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो लाजमी है कि हम जानना चाहेंगे कि ये कौन से बैक्टीरिया हैं, ताकि हम इनके बारे में और जानकारी जुटा सकें, ताकि पेशेंट्स की और बेटर हेल्प हो।
उन्होंने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये जीव आंत में रहते हैं और खाना पचाने, स्वभाव को प्रभावित करने और प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में मदद करते हैं। हालांकि अब तक इनका अध्ययन करना मुश्किल रहा है। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह का शोध भारत में बहुत कम हुआ है और इससे मिले आंकड़ों से भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली तथा अन्य अनुसंधान भी लाभ मिलेगा। इस अनुसंधान को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सहायता से किया गया है। ब्राजील की यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया से आए प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और गैर सरकारी संगठन चिंतन द्वारा संचालित कचरा प्रबंधन केंद्रों का दौरा कर कचरा संग्राहकों से संवाद किया। नगरपालिका ने बताया कि इन केंद्रों में खान मार्केट, कौटिल्य मार्ग और बंगाली मार्केट शामिल हैं। नगरपालिका परिषद के अनुसार प्रतिनिधियों ने कचरा संग्राहकों की मेहनत, कौशल और समर्पण को प्रेरणादायी बताया। परिषद ने आगे कहा कि ये मुलाकात समावेशी स्वच्छता और सम्मानजनक आजीविका की दिशा में परिषद के सामूहिक प्रयासों को सशक्त बनाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है, जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद दिलाता है। हर वर्ष इस दिन देश उन वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है जिनकी कहानियां राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बनी हुई हैं। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल AA खान नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी सेना के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण किया था। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। इस दीर्घा में परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 विजेताओं के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इसका उद्देश्य आगंतुकों को उन राष्ट्रीय नायकों के बारे में शिक्षित करना है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अदम्य संकल्प और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। ये उन वीर योद्धाओं की स्मृति को सम्मानित करने की भी एक पहल है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज छोटे साहिबजादों की शहादत को समर्पित वीर बाल दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक भी मौजूद रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि बैठक में कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई जिसके माध्यम से छोटे साहिबजादों की शहादत और अदम्य साहस की वीरगाथा को राजधानी के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में आयुष पर संसदीय परामर्श समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने औषधीय पौधारोपण की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि ये किसानों के सशक्तिकरण और जैव विविधता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
श्री जाधव ने कहा कि सरकार स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और सतत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही आयुष प्रणालियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल ढांचे के साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड की पहलों पर बात करते हुए श्री जाधव ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से बोर्ड देश भर में औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू कर रहा है। आयुष मंत्री ने कहा कि किसानों को जागरूक करने तथा उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर विशेष बल दिया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने कल हुई इस बैठक में भाग लिया। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। इस वर्ष का विषय है विज्ञान तथा स्वास्थ्य और आरोग्य के बीच संतुलन बहाल करना। आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से आयुष प्रदर्शनी भी आयोजित करेगा। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह भिदूरी ने बताया कि संसद से मंजूरी मिलने के बाद पालम रेलवे फाटक पर अंडरपास के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और शाहबाद अंडरपास के लिए भी टेंडर जारी कर दिए गए हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति में श्री भिदूरी ने कहा कि निर्माण कार्यों की मंजूरी से क्षेत्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इस विषय पर संसद में जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली रेवाड़ी खंड के पालम रेलवे फाटक पर अंडरपास का काम शुरू कर दिया गया है और इस पर 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। साथ ही शाहबाद रेलवे क्रॉसिंग पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अंडरपास बनाया जा रहा है और इसके लिए भी टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि गुरुवार को ओखला जल संयंत्र के परिसर में पाइपलाइन मरम्मत के कार्य के कारण सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया कि इस दौरान ओखला फेज 1, ओखला फेज 3, कालकाजी, गोविंदपुरी, ओखला सब्जी मंडी, लाजपत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश आदि और इनके आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को शाम के समय पानी बंद रहेगा। वहीं मरम्मत कार्यों के कारण सुबह के समय प्रहलादपुर, तुगलकाबाद गांव, संगम विहार और नगर आदि के आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने क्षेत्रवासियों को पर्याप्त पानी का भंडारण रखने की सलाह दी है, साथ ही जरूरत के समय लोग पानी के टैंकर के लिए जल आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडियन पॉइल्स गिल्ड की याचिका पर नागरिक विमानन महानिदेशालय से जवाब मांगा है। याचिका में संबंधित अधिकारियों द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में न्यायालय से स्वीकृत नई उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियमावली को कथित रूप से पूरी तरह लागू नहीं करने के लिए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में हवाई और रेल सेवाएं बाधित रहीं। कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानें देरी से चलीं। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे उड़ान संबंधी ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें विलंबित चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज सुबह 6 बजे तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वायु प्रदूषण के विषय में आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 10 वर्षों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कार्य नहीं किया।
आज प्रेस वार्ता में श्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लगातार राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 11 में से 8 महीनों में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहतर रहा।
पिछले साल के मुकाबले 11 महीनों में से 8 महीने बेटर रहे, और यही नहीं, हर दिन आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब फेयर सिचुएशन में है दिल्ली, तब भी पिछले साल के मुकाबले फिर भी आज पोल्यूशन कम है।
श्री सिरसा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए और सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें इस बृहस्पतिवार से पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि राजधानी में निर्माण सामग्री लेकर आ रहे ट्रकों पर भी आज से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी ट्रक अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाता दिखाई दिया, कोई बदरपुर, कोई रेता सैंड लाता दिखाई दिया, किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ी अगर दिखाई दी, तो भाई मैं ट्रांसपोर्टर भाइयों को बताना चाहता हूँ, वो गाड़ी सीज कर ली जाएगी, उसके ऊपर हैवी पेनल्टी इतनी लगेगी कि गाड़ी छुड़वा नहीं पाओगे। इसलिए दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके का बदरपुर, किसी भी तरीके की रेता, किसी भी तरीके का बिल्डिंग मटेरियल लाना टोटल बैन है।
श्री सिरसा ने लोगों से सरकार का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार शहरवासियों को साफ हवा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
राजधानी में आज सुबह के समय धुंध छाई रही और वहीं दिन के समय धूप खिली रही, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य 0.3 डिग्री कम 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल शहर के विभिन्न हिस्सों में सुबह हल्की धुंध छाये रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं राजधानी में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक प्रसिद्ध टिकट और होटल बुकिंग की फर्जी वेबसाइट बनाकर अमेरिका स्थित एक व्यक्ति से 57,000 रूपए से ज्यादा की ठगी की थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ओटीपी और यूपीआई का उपयोग कर रकम अपने क्रेडिट कार्ड में मंगवाता था। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर 10 आरोपियों को शाहीनबाग से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी खुद को सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को ठगते थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है और उनके ऊपर साइबर अपराध पोर्टल पर 66 शिकायतें दर्ज हैं। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 साइकिलिंग प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग फिटनेस के सबसे बेहतरीन और सुलभ माध्यमों में से एक के रूप में उभरी है और ये फिट इंडिया मूवमेंट का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुनहरी पुल नाला के डी सिल्टिंग कार्यों का निरीक्षण किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के शोधकर्ताओं ने माइक्रोबायोम के बारे में बिना सर्जरी के पता लगाने वाला उपकरण तैयार किया। ब्राजील से आए प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और गैर सरकारी संगठन चिंतन द्वारा संचालित कचरा प्रबंधन केंद्रों का दौरा किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी वेबसाइट बनाकर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया और दिल्ली में घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवाई और रेल सेवाएं बाधित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।